14 नवंबर दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फतल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान इंडिया सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा पर दिया जोर।
भारत के 59वें गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे मुख्य अतिथियों के रूप में आसियान देशों के नेताओं का स्वागत करने के लिए 125 करोड़ भारतवासी इंतजार कर रहे हैं।
देखेंगे भारतीय कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में कितनी आई है कमी।
पिछले साल इतने इंसिडेंट होते थे, आज पूरे हफ्ता कोई इंसिडेंट नहीं होता है और बहुत सुधार आया है सिचुएशन में।
चर्चा होगी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। आसियान सम्मेलन के अंतिम दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मनीला में समूह के नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि आने वाले वर्षों में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अहमियत और बड़ी हो। मोदी ने कहा कि वे क्षेत्र में राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों के समाधान को लेकर साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी ने भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। ईरान इराक की पहाड़ी सीमा पर रविवार को आए शक्तिशाली भूकंप में 450 से अधिक लोग मारे गए थे। इस भूकंप में 12,000 रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं और हजारों लोगों को सर्द रात में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। केमंशा इलाके का दौरा करते समय रोहानी ने कहा कि राहत कार्यों में सभी सरकारी संसाधनों को उतार दिया गया है। मैं यहां आया हूं तो कई पीड़ितों ने मुझसे टेंट और अस्थाई घरों की मांग की है। हम टेंट और जरूरत की सभी चीजें पीड़ितों को मुहैया कराएंगे। हम उन सभी को लोन और अनुदान देंगे जिनके घर तबाह हुए हैं। अस्थाई रूप से रहने के लिए हम कुछ पैसा भी पीड़ितों को देंगे। ये थे राष्ट्रपति हसन रोहानी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त ने भूमध्य सागर में शरणार्थियों को रोकने और उन्हें वापस लीबिया भेजने की यूरोपियन यूनियन की नीति को अमानवीय बताते हुए उसकी निंदा की है। जैद राद अल हुसैन ने कहा कि लीबिया में अफ्रीकी बेहद भयावह स्थिति में रह रहे थे और मानवता के लिए एक गुस्से की तरह है। लीबिया सरकार के अनुसार तकरीबन 20,000 शरणार्थी लीबिया में हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कई सुनवाइयों के दौरान कोर्ट में ना पेश होने के पर पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने देश के वित्त मंत्री इशाक डार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। डार पर अज्ञात स्रोतों से अकूत संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप हैं। हालांकि उन्होंने कोई भी गलत काम करने से इनकार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संपत्ति की जांच के दौरान डार पर ये आरोप लगे थे। डार को शरीफ का करीबी समझा जाता है जो अभी लंदन में अपना इलाज करा रहे हैं। सीमा पार करते समय घायल हुए उत्तर कोरिया के जवान की जान दक्षिण कोरिया के डॉक्टर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जवान जब सीमा पार कर रहा था तब उत्तर कोरियाई सुरक्षा बलों की फायरिंग में जवान को 5 बार गोलियां लगी थी। दक्षिण कोरियाई सेना के प्रवक्ता रोजे छन का कहना है कि जवान की कार उत्तर कोरिया सीमा पर फंस गई थी। सीमा पार करते समय उत्तर कोरिया की सीमा पर जवान की कार नाले में फंस गई थी। वह कार में अकेला था और दक्षिण कोरिया की ओर जाने पर उत्तर कोरिया के जवान उस पर गोलियां चलाने लगे। उसे कंधे और कोहनी में भी कई गोलियां लगी हैं। ये थे दक्षिण कोरियाई सेना के प्रवक्ता रोजे छन के शब्द। अदन में यमन सुरक्षा बलों के कैंप पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। इस जगह को सऊदी समर्थित मिलिशिया समूह इस्तेमाल करते हैं जो क्षेत्र में हुती विद्रोहियों से लड़ रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है कि 2 आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी कार को उड़ा लिया था। हताहतों में आम लोग भी शामिल हैं। तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और उसका कहना है कि उसने कैंप के ऑपरेशन रूम को निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले लेबनान के नेता साद अल हरीरी ने कहा है कि वह अगले 2 दिनों में बेरूत वापस लौटेंगे। सऊदी अरब में रह रहे हरीरी ने लेबनान के मेरोनाइट ईसाई गुरु बेशारा अल राई से मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट कर वापसी की घोषणा की है। साथ ही सऊदी में पहली बार ये किसी पहले मेरोनाइट चर्च के नेता का दौरा है। तेल खोजने का लाइसेंस जारी करने के खिलाफ पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस नॉर्वे सरकार को ओस्लो की अदालत में ले जाने की तैयारी कर रही है। ग्रीन पीस का कहना है कि जलवायु परिवर्तन को सीमित करने वाले पेरिस समझौते पर सहमति बनने के बाद ऐसा किया गया है। नॉर्वे में संस्था के एक कार्यकर्ता ट्रूज ग्लोफसन का कहना है कि विश्व की ऊर्जा कंपनियां इतना तेल या गैस खो चुके हैं जिसका दुनिया अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान इंडिया सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जोर दिया है और कहा है कि भारत संगठन के मुल्कों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले पर काम करने की कोशिश करेगा। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप एशिया की अपनी 12 दिनों की यात्रा खत्म कर स्वदेश लौट गए। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
दक्षिण पूर्व एशिया के समूह या आसियान के आखिरी दिन अपने भाषण में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संगठन के देशों को आश्वस्त करना चाहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद करेगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपने स्तर पर आतंकवाद और खूनी उग्रवाद से लड़ने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम क्षेत्र में इस मामले पर उठ रहे चैलेंज का मिलकर मुकाबला करें। आसियान के 31वें शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर बोलते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान देशों के बीच व्यापारिक संबंध समुद्री रास्तों के माध्यम से हजारों साल पहले शुरू हुए थे और ज़रूरत है कि उसे और मजबूत किया जाए। मोदी ने आसियान नेताओं को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आने का न्योता भी दिया।
भारत के 59वें गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे मुख्य अतिथियों के रूप में आसियान देशों के नेताओं का स्वागत करने के लिए 125 करोड़ भारतवासी इंतजार कर रहे हैं। हम सभी के बेहतर भविष्य के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष नेताओं से भी आज भेंट की, जिसमें सुरक्षा और व्यापार संबंधों पर बात हुई। मोदी और थाईलैंड के नेता प्रयुत चानोचा और चीन के प्रधानमंत्री ली किचियांग के साथ भी मुलाकात हुई। मनीला में भारतीय समुदाय के लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश में बदलाव की हर कोशिश कर रही है। 50 साल पहले जब 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे 5 देशों ने मिलकर आसियान का गठन किया था, तब किसी को नहीं लगा था कि ये इतने लंबे वक्त तक काम कर पाएगा। अब आसियान में 10 सदस्य हैं, जिसमें गैर सदस्य अमेरिका, चीन और जापान जैसे शक्तिशाली देश भी खासी रुचि रखते हैं। अपने 5 देशों के दौरे से वापस लौटते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि इन देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंध कायम रहें।
We've explained that the United States is open for trade.
हमने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका व्यापार चाहता है, लेकिन ये बराबरी पर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अमेरिका को इसमें न्याय संगत हिस्सा मिले। मैंने पहले भी साफ तौर पर कहा है, ये बात चीन में भी मैंने कही कि अमेरिका का फ़ायदा उठाया गया है। उसने जितना कुछ दिया उसे उसके बदले में उतना नहीं मिला, इसलिए हम व्यापार में बराबरी से हिस्सेदारी चाहते हैं। तब आप देखेंगे कि इस मामले में कितनी बेहतरी होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। भारतीय प्रधानमंत्री आज मनीला से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब कुछ खबरें भारत से। सोशल मीडिया पर सोमवार को एक वीडियो प्रसारित किए जाने के बाद एक बार फिर नए सिरे से निजता और उसके उल्लंघन की बहस छिड़ गई है। इस वीडियो में एक युवक और युवती बेडरूम में साथ साथ नजर आते हैं। गुजरात के युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने वीडियो के सामने आने के बाद ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट करके इसे खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है, क्योंकि वीडियो में नजर आने वाले युवक का चेहरा कथित रूप से हार्दिक पटेल जैसा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में इस वीडियो पर चर्चा गर्म हो गई है। सरोज सिंह की रिपोर्ट।
हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि उन्हें बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सोमवार को गांधीनगर में उन्होंने कहा कि विवादित वीडियो में वो नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर गंदी राजनीति के तहत महिलाओं के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, पर अब सवाल ये भी उठने लगा है कि ऐसे मामलों में गुप्त रिकॉर्डिंग करने वाले तक कानून क्यों नहीं पहुंच पाता। आखिर गुप्त वीडियो बनाने के पीछे मंशा क्या थी और कानून इस बारे में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल के मुताबिक सबसे पहले वीडियो को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजना चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीडी असली है या फर्जी।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में जो बना था उसके तहत इस तरह की कोई भी जो सीडी होती है उसको चेक करना पड़ता है कि ये सही भी है कि नहीं, और उसको चेक करने के बाद में अगर ये पाया जाता है कि ये वाकई अश्लील है, अगर ये कोई झूठी सीडी बनाई गई है, तो जिसने ये सीडी को बनाया सर्कुलेट किया है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सेक्शन 67 के तहत केस दर्ज हो सकता है कि उन्होंने किस तरह के गलत काम करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करी।
राजनीतिक लोगों के निजी क्षणों का वीडियो खींचकर सार्वजनिक करने के मामले पहले भी सामने आए हैं। पिछले साल दिल्ली सरकार में महिला कल्याण मंत्री संदीप कुमार भी विवाद में फंस चुके थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो सामने आने के बाद उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से हटा दिया और बाद में पार्टी से निकाल दिया। सन 2013 में मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव की एक सीडी ने वहां की राजनीति में भूचाल ला दिया था। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल नारायण दत्त तिवारी भी सेक्स वीडियो कांड में फंस चुके हैं। भाजपा के संजय जोशी भी इसी कारण राजनीति के हाशिए पर चले गए। सुप्रीम कोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल कहती हैं कि वीडियो में नजर आने वाला महिला या पुरुष अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहते तो ये काम कोई तीसरा आदमी भी कर सकता है।
शिकायतकर्ता या तो वो पुरुष होगा या वो महिला होगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई ये ऑब्सिनिटी है या अश्लीलता है तो आप इसके अंदर कोई तीसरा व्यक्ति भी जो समाज का हमारा को भारत का नागरिक है ऑब्सिनिटी की कम्प्लेंट जो फिर भी फाइल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो महिला ही कम्प्लेंट करे।
राजनीतिज्ञों के सेक्स सीडी विवाद में छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत का नाम हाल ही में सामने आया है। हालांकि मंत्री राजेश मूणत ने इस वीडियो को फर्जी बताया है। अब सवाल ये कि आईटी एक्ट के तहत ऐसे सीडी मामलों में भी कई तरह की कार्रवाई हो सकती है। साइबर कानून के जानकार पवन दुग्गल का मानना है कि ऐसे मामलों में सीडी बनाने वाले का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।
देखिए, जब आप कोई भी सीडी बनाते हैं तो सीडी में आपका नाम तो लिखा होता नहीं। सीडी एक इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक एसेट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेटा या डिजिटल डेटा डाला जाता है। जब आप डालते हैं तब ऑब्वियसली कुछ सुराग छोड़ जाते हैं मेटा डेटा को लेकर, लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहें तो आज बहुत सारे फ्री टूल्स उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से आप इस चीजों को छुपा सकते हैं। मसलन अगर आप गूगल पे चले जाइए और आप बहुत सारे इस तरह के मास्किंग टूल्स को देख लें तो वो टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं।
दिक्कत ये भी है कि देश का आईटी एक्ट साल 2000 में बना था और 2008 में उसमें संशोधन हुआ था, लेकिन इसके बाद टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो चुकी है। ऐसे में हर सीडी मामला केवल लोगों के चरित्र पर आकर रुक जाता है। ज्यादातर मामलों में वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। सरोज सिंह, बीबीसी दिल्ली।
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की निकट सहयोगी वीके शशिकला के स्वामित्व वाली कई संपत्तियों पर लगातार पांचवें दिन आयकर अधिकारियों के छापे जारी रहे। शशिकला के भतीजे विवेक जयरमन, जो कि जया टीवी का कामकाज देखते हैं, ने दूसरे भतीजे टीटीवी दिनकरन से इस मामले पर अलग विचार प्रकट किए हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों का मानना है कि इसके जरिए एक तरह का राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आज पांचवां दिन हो चुका है जब से वीके शशिकला और उनके परिवार के सदस्यों पर इनकम टैक्स छापे शुरू हुए। बहुत जगहों से खबर आई है कि छापे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ताजी जानकारी ये है कि आज भी नीलगिरीज के कोडरनाडु एस्टेट में छापे चल रहे हैं। शशिकला के सबसे बड़े भतीजे टीटीवी दिनकरन ने पहले दिन ही पुष्टि कर दी थी कि ये राजनीति से प्रेरित छापे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर से इनकम टैक्स इलाके से कोई जानकारी नहीं दी गई है। बहरहाल, आज शशिकला के एक और भतीजे विवेक जयरामन ने चेन्नई में पत्रकारों को बयान दिया कि इनकम टैक्स के छापों में उनको कोई राजनीति नहीं दिखाई दी है। विवेक जयरामन की मां इलावर्सी हैं, जो शशिकला के साथ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराई गई हैं और अभी बेंगलुरु के जेल में सजा काट रही हैं। विवेक जयरामन ने कहा, पिछले पांच दिनों से इनकम टैक्स के छापे जया टीवी और जैज सिनेमा पर चल रहे हैं। हम इन दोनों संस्थाओं को संभालते हैं। अधिकारियों के जो भी सवाल थे हम उसका जवाब दिए हैं। वो हमारी पत्नी के जेवरात के बारे में भी सवाल किए हैं। वो जेवरात हमारी शादी के हैं और उसके लिए हम दस्तावेज आने वाले दिनों में पेश कर देंगे। हम नहीं मानते कि इसको राजनीतिक तौर से देखना चाहिए। अधिकारियों ने उनका काम किया है। ये थे विवेक जयरामन के शब्द। विवेक जयरामन वही हैं जो उनकी माँ इलेवर्सी के साथ जयललिता के घर पोस्ट गार्डन में रहा करते थे। वो जयललिता के बहुत ही करीब थे, जब से उनके पिता की मौत जयललिता के हैदराबाद फार्म हाउस में हुई थी। बहरहाल इन छापों से अन्ना डीएमके के गुटों में एक तरह की खुशी भी हुई है। जयललिता के निधन के बाद अन्ना डीएमके तीन गुटों में बिखरी हुई थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और मुख्यमंत्री एडप्पडी पलनीस्वामी के गुटों ने समझौता कर लिया। पर टीटीवी दिनकरन और वी के शशिकला के गुट में अभी भी बहुत सारे विधायक हैं जो पलनीस्वामी पनीरसेल्वम के गुट को समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो इन छापों का क्या असर पड़ेगा अन्ना डीएमके के अंदरूनी राजनीति पर? हमने ये सवाल राजनीतिक विश्लेषक मालन से पूछा। उन्होंने कहा,
Yes, definitely the sense because one section of अन्ना डीएमके is very happy and joyous because they think
इन गुटों के बीच कुछ भी हो सकता है। शायद थोड़े विधायक दिनकरन शशिकला के गुट से पलनीस्वामी पनीरसेल्वम के गुट को समर्थन भी दे सकते हैं, पर यह निर्भर होगा इन छापों के जांच पर। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये बात आ रही है कि केंद्र की बीजेपी सरकार का मकसद ये भी हो सकता है कि दिनकरन शशिकला का गुट पलनीस्वामी पनीरसेल्वम के गुट को समर्थन दे। ये थे मालन के शब्द। मतलब ये कि अगर अन्ना डीएमके मजबूत नहीं बन पाती है तो उसे कमजोर बना दें। कैसे भी इन सब राजनीतिक घटनाक्रमों का असर 2019 के चुनावों पर कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों के लिए आज से प्रचार अभियान की शुरुआत की। शुरुआत अयोध्या से करते हुए उन्होंने कई अन्य जगहों पर सभाएं की। योगी ने विपक्षी दलों पर अयोध्या को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, तो राम मंदिर के बारे में उन्होंने कोर्ट के फैसले से पहले आम सहमति बनाने की कोशिशों का स्वागत किया है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
फैजाबाद और अयोध्या के प्रति योगी के आध्यात्मिक प्रेम को सहज ही समझा जा सकता है, लेकिन उसका राजनीतिक महत्व भी उनके लिए कहीं से कम नहीं है। निकाय चुनाव को उनकी पहली बड़ी चुनौती माना जा रहा है, तो उन्होंने इस चुनौती को भी स्वीकार करने की शुरुआत पहली बार नगर निगम का दर्जा पाए शहर अयोध्या से ही की। करीब एक महीने पहले दीपावली पर सरयू नदी के तट पर दीप जलाने का रिकॉर्ड बनाने वाले आदित्यनाथ योगी ने इस बार अपने राजनीतिक संदेश को स्पष्ट रूप से सामने रखा।
अयोध्या के नाम से बहुत सारे लोगों को चिढ़ होती है, सपा बसपा के लोगों को बुरा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई करंट इनके शरीर पे छू रहा है, लेकिन अयोध्या हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। सचमुच जो सम्मान अयोध्या को मिलना चाहिए था, अयोध्या को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, पिछली प्रदेश सरकारों ने बड़ी उपेक्षा की है। भाइयों बहनों, जो आपकी पहचान पर संकट खड़ा कर रहे हो, जिन लोगों ने आपकी पहचान को छुपाने का प्रयास किया हो और जिन लोगों ने सदैव आपकी पहचान के साथ भेदभाव किया हो, ऐसे लोगों को कभी माफ किए जाने की आवश्यकता नहीं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी गोरखपुर के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी एक जगह गए होंगे तो वो है अयोध्या। मुख्यमंत्री की जनसभा भले ही निकाय चुनाव के मकसद से रही हो, लेकिन इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सहमति बनाने की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के बाद अब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी इस मकसद से 16 नवंबर को अयोध्या जा रहे हैं। यह अलग बात है कि मंदिर मुद्दे पर फिलहाल कोशिश जिनकी ओर से हो रही है उनमें से कोई भी इस मामले में पक्षकार नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का इन कोशिशों को पूरा समर्थन है।
प्रयास किसी भी स्तर पर हो स्वागत योग्य है। बातचीत पहले भी प्रारंभ हुई थी, एक पक्ष हमेशा वार्ता की टेबल से भाग खड़ा होता था। समस्या ये नहीं कि बातचीत हो, समस्या ये है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से बातचीत को तैयार हों, अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं, लेकिन नियत ठीक होनी चाहिए।
अयोध्या और मथुरा को नगर निगम का दर्जा देने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। लगभग आधे घंटे के भाषण में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों और अयोध्या समेत तमाम धार्मिक शहरों के लिए घोषित योजनाओं का जमकर उल्लेख किया, लेकिन अयोध्या के साधु संतों से खासतौर पर बीजेपी को वोट देने की उनकी अपील की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा रही। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बताया है कि साल 2017 में कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में 90% की कमी आई है। क्या जो कुछ पुलिस कह रही है वो सब सच है? एक तरफ पुलिस का पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी का दावा, तो दूसरी ओर कश्मीर के स्थानीय युवाओं के चरमपंथी संगठनों में शामिल होने की चुनौती। कैसे हैं आखिर कश्मीर के जमीनी हालात, सुनिए माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
वर्ष 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मौत के बाद कश्मीर में करीब 6 महीनों तक भारत विरोधी प्रदर्शनों की लहर चली थी। इन प्रदर्शनों में करीब 80 प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए थे। प्रदर्शनों और पत्थरबाजी का यह सिलसिला 2017 के इब्तदाई कुछ महीनों तक जारी रहा। बीते कई महीनों से कश्मीर में पत्थरबाजी या सड़कों पर आए दिन होने वाले प्रदर्शनों में कमी का दावा करते हुए डीजी पुलिस एसपी वैद ने बताया कि कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आने के कई एक कारण हैं।
जहां तक स्टोन पेल्टिंग पत्थरबाजी का ताल्लुक है, उसमें परसेंटेज क्या बोलूंगा, आप एक कश्मीर में रहने वाला जो उसको ऑब्जर्व करता है रोजमर्रा, वो महसूस करेगा कि बहुत कमी आई है। जहां पिछले साल इतने इंसिडेंट होते थे, आज पूरे हफ्ता हफ्ता कोई इंसिडेंट नहीं होता है और बहुत सुधार आया है सिचुएशन में।
ताहम साथ ही डीजीपी का ये भी कहना था कि कश्मीर का स्थानीय युवा जिस तरह से चरमपंथियों के सफ़ों में शामिल हो रहा है वो एक चुनौती है और जिस चुनौती से जम्मू कश्मीर पुलिस जूझ रही है।
लेकिन ये जो आपने कहा कि 40 बच्चे ज्वाइन कर गए हैं मिलिटेंसी, मेरे पास उसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट ये हमारे लिए जस्ट मैटर ऑफ कंसर्न है, ये एक चैलेंज है, तो इसको जेएनके पुलिस इस चैलेंज से जूझ रही है।
पुलिस के प्रमुख के इस दावे में कितनी सच्चाई है यही जानने की हमने कोशिश की कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ताहिर मुहिदीन से।
देखिए, उनका ये जो कहना है कि 90% जिसमें कमी आई है, मुझे लगता है उतनी कमी नहीं आई है। अब भी यहाँ पर वो जब इनकाउंटर होता है तो लोग निकलते हैं और पथराव हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस पर, तो उसके अलावा भी ऐसे वाकात अभी होते रहते हैं। लेकिन किसी हद तक अगर कमी आई है तो उसमें मुझे लगता है एक फैक्टर पुलिस ने बड़े पैमाने पर नौजवानों की जो गिरफ्तारियां की हैं।
विश्लेषक ये भी कहते हैं कि जिस तरह से नोटबंदी के बाद भारत सरकार ये तासुर देने की कोशिश करती रही कि कश्मीर में नोटबंदी के बाद पथराव की घटनाएं बंद हो गई, वो एक गुमराह कुंदलील है। कश्मीर घाटी में बीते 6 महीनों से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है, जिस ऑपरेशन में सिर्फ दक्षिणी कश्मीर में अब तक करीब 76 चरमपंथी मारे जा चुके हैं। साल 2017 में अब तक कश्मीर में करीब 150 से ज्यादा चरमपंथी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन ऑल आउट में सबसे ज्यादा चरमपंथी दक्षिणी कश्मीर में मारे गए हैं। बीते साल भारत विरोधी प्रदर्शनों की लहर दक्षिणी कश्मीर से ही शुरू हो गई थी। इस बीच कल शाम उत्तरी कश्मीर के जचिलडारा इलाके में पुलिस ने 2 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोर्ड।
और अब नजर दौड़ाते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है, सूर्यांशी पांडे के साथ।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर क्रिकेट के मैदान से। मलेशिया में चल रहे अंडर 19 एशिया कप से भारत बाहर हो चुकी है। आज बांग्लादेश के खिलाफ हुए मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। भारत की हार पर बात कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली।
बांग्लादेश अगर आप देखेंगे एक दिवसीय और T20 में तो एक अच्छी टीम मानी जाती है, बड़ी बड़ी टीमें उनसे घबराती हैं और टेस्ट मैच में भी वो इम्प्रूव कर रहे हैं हल्के हल्के। तो एशिया में भारत के बाद अगर मैं कहूंगा सबसे जो है इम्प्रेसिव टीम है वो है बांग्लादेश। आने वाले टाइम के लिए अगर ऐसी ही टीमें आएंगी तो बड़ी टीमों को कंपटीशन मिलेगा, तो उससे क्रिकेट का स्तर ऊपर होगा।
भारत को बांग्लादेश ने 8 विकेटों से हरा दिया। भारत के पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ अंडर 19 टीम के कोच हैं। अब आपको लेकर चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट में। चाइना में खेले जा रहे चाइना ओपन सुपर सीरीज में मिक्स डबल्स में भारत की अश्विनी पोनप्पा और सात्विक सैराज की जोड़ी 2 क्वालिफायर पार करके मेन ड्रॉ में अपनी जगह बना ली है। भारत की मिक्स डबल्स की इस जोड़ी ने चाइनीज ताइपे ली जे हुई और वू टी जंग को हरा कर मेन ड्रॉ के लिए क्वालिफाई किया। और अब खबर फुटबॉल ग्राउंड से। रूस में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2018 में 4 बार फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली इटली टीम शामिल नहीं हो पाएगी। पिछले 60 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि 4 बार की चैंपियन रही इटली टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। 13 नवंबर को हुए प्लेऑफ मुकाबले में इटली को स्वीडन ने 1-0 से हरा दिया। इटली के फीफा वर्ल्ड कप 2018 में ना होने पर बात कर रहे हैं फुटबॉल पंडित नोवी कपाड़िया।
इटली के लिए तो खैर बहुत ही दुख है, बिल्कुल एक मतलब एक तरह का कई उनके प्लेयरों ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल छोड़ दिया है, जैसे लाजवाब गोलकीपर थे बुफोन, डेनियल डी रॉसी, चेलिनी, तो एक कहते ही पूरा इतिहास का पन्ना बदल गया है। और खैर विश्व कप के लिए भी नुकसान है क्योंकि 2 महान दिग्गज देश नहीं खेलेंगे, इटली भी नहीं पहुंचे, नेदरलैंड्स भी नहीं पहुंचे।
जहां इटली की टीम अपने आप को अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में खेलता नहीं देख पाएगी, वहीं स्वीडन की टीम 2006 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में खेलती नजर आएगी। इटली ने 1934, 1938, 1982 और 2006 में फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था।
और अंत में सुनिए वो आवाज जिसकी आज 128वीं वर्षगांठ है।
अगर कोई बाहर का हमला हो और फौजी हमला हो तो हमारी फौज है, हमारी हवाई जहाज है और हमारे बहादुर नौजवान हैं जो उसमें काम करते हैं, वो उससे बचाएंगे, ठीक है, लेकिन आखिर में फौज नहीं बचाती है किसी मुल्क को, ना हवाई जहाज बचाते हैं आखिर में।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू की जिंदगी के कई शेड्स थे। भारतीय जनमानस के महानायक नेहरू, आजादी की लड़ाई लड़ते नेहरू, बच्चों पर प्यार लुटाते नेहरू, बेहतरीन किताबें लिखने वाले नेहरू, इतिहासकार नेहरू, आशिक मिजाज नेहरू वगैरह वगैरह। नेहरू के जीवन का सबसे प्रबल पक्ष था भारत के जिन लोगों और आम लोगों के जीवन से उनका कनेक्ट। 27 मई 1964 को जब नेहरू का निधन हुआ था तो उनकी मेज पर मशहूर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये 4 पंक्तियां पाई गई थी। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep.
Ghan saghan man mohan van taru mujhko aaj bulate hain. Ghan saghan man mohan van taru mujhko aaj बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको, मिलो मुझको चलना है।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। आसियान सम्मेलन के अंतिम दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मनीला में समूह के नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि आने वाले वर्षों में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अहमियत और बड़ी हो। ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी ने भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। ईरान इराक की पहाड़ी सीमा पर रविवार को आए शक्तिशाली भूकंप में 450 से अधिक लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त ने भूमध्य सागर में शरणार्थियों को रोकने और उन्हें वापस लीबिया भेजने की यूरोपियन यूनियन की निंदा की है। BBC समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।